आज की इस इन डेप्थ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है।
हाँ, और आज का हमारा विषय सच में बहुत ही मजेदार और हर किसी के काम का है।
बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास चलने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में।
ये सुनने में थोड़ा बड़ा टर्म लग रहा होगा,
पर आज हम इसको छोटी छोटी स्टोरीज और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे।
एकदम सही, क्योंकि हमारे नोट्स आज इस चीज पर फोकस करते हैं कि लोग काम कैसे करते हैं और पैसे कैसे कमाते हैं।
और सबसे बड़ी बात, ये सारे काम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं।
हाँ, इस इनडेप्थ डिस्कशन में हमारा एक बहुत क्लियर मिशन है।
मिशन ये है कि हम तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स को समझेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर।
लेकिन इस सब को समझने से पहले एक बहुत ही पुरानी और जरूरी बात बता दूं।
हाँ, कौटिल्या के अर्थशास्त्र वाली बात ना।
बिल्कुल, कौटिल्यास का अर्थशास्त्र, जो कि हमारा एक बहुत पुराना और फेमस टेक्स्ट है, उसमें कमाल का कोट है।
वो कोट कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की असली जड़ है।
अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो तो दुनिया आगे ही नहीं बढ़ सकती।
तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली आती है।
हाँ,
रिमेम्बर दिस, आज का हमारा मेन टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
तो चलिए एक बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते हैं।
पूछो।
आखिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? हम दिन भर कितने सारे काम करते हैं?
कोई खेलता है, कोई गाना गाता है, तो क्या वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है?
नहीं, देखो, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो कोई भी ऐसा काम जिसे मॉनेटरी वैल्यू पैदा होती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं।
मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे के रूप में मापी जाने वाली वैल्यू ना।
हाँ बिल्कुल, अगर आप कोई काम करते हो और उसके बदले आप पैसे कमाते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
जैसे किसी किसान का खेत में काम करना और फसल बेचना।
एकदम सही।
या किसी इंजीनियर का नया सॉफ्टवेयर बनाना।
हाँ, पहले के जमाने में लोग सिर्फ खेती करते थे या मिट्टी के बर्तन बनाते थे,
और आज के टाइम पर लोग कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स भी बनाते हैं।
सही कहा, टाइम के साथ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं और बदल भी गई हैं।
तो इतने सारे अलग अलग कामों को हम एक साथ कैसे समझें?
इसीलिए इन कामों को समझने के लिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है।
अच्छा,
और इन्हीं ग्रुप्स को हम इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं।
तो आगे बढ़ने से पहले इस कंसेप्ट को लॉक कर लेते हैं।
बिल्कुल,
रिमेम्बर दिस, कोई भी काम जो मॉनेटरी वैल्यू बनाता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं।
बहुत बढ़िया, अब इन ग्रुप्स को एक एक करके समझते हैं।
ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहला ग्रुप क्या है?
सबसे पहला ग्रुप है प्राइमरी सेक्टर।
प्राइमरी मतलब सबसे पहला या बेसिक?
हाँ, जब हम कोई चीज बनाने के लिए सीधे नेचर यानी प्रकृति पर डिपेंड होते हैं तो उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं।
मतलब हम नेचर से डायरेक्टली चीजें लेते हैं।
बिल्कुल, इसमें हम प्रकृति से रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल निकालते हैं।
जैसे जमीन से सब्जियां और अनाज उगाना।
हाँ,
या फिर समंदर में जाकर मछली पकड़ना।
एकदम सही एग्जाम्पल दिया तुमने। एग्रीकल्चर यानी खेती करना इसका सबसे बड़ा हिस्सा है।
और क्या क्या आता है इसमें?
माइनिंग यानी खदानों से कोयला और लोहा निकालना भी प्राइमरी सेक्टर है। उसके अलावा फिशिंग और फॉरेस्ट्री यानी जंगलों से लकड़ी लाना भी इसमें शामिल है।
और जो लोग गाय भैंस पालते हैं।
रेजिंग लाइव स्टॉक यानी जानवर पालना भी प्राइमरी सेक्टर की ही एक्टिविटी है।
तो बेसिकली कोई भी काम जो नेचर से कच्चा माल लाता है वो इसमें आता है।
हाँ, ये सबसे बेसिक लेवल है।
तो इसको याद रखने का टाइम आ गया है।
हाँ बताओ।
रिमेम्बर दिस, प्राइमरी सेक्टर का मतलब है प्रकृति से सीधे रॉ मटेरियल्स प्राप्त करना, जैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग।
एकदम परफेक्ट। लेकिन अब एक सवाल आता है।
कैसा सवाल?
Here's where it gets really interesting. अब इन रॉ मटेरियल्स का आगे होता क्या है?
हाँ, हम कच्चा लोहा या कच्ची लकड़ी थोड़ी ना यूज कर सकते हैं।
वही तो, अब बारी आती है हमारे दूसरे ग्रुप की जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं।
अच्छा,
यहाँ लोग प्राइमरी सेक्टर से मिले हुए रॉ मटेरियल्स को बदलते हैं और उनसे नई चीजें बनाते हैं।
ओह, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं।
बिल्कुल सही, मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण करना।
मतलब जंगल की लकड़ी प्राइमरी थी और जब उस लकड़ी से फैक्ट्री में कुर्सी और टेबल बन गई तो वो सेकेंडरी बन गया।
एकदम सही पकड़ा। एक और एग्जाम्पल ले लो,
खेत के गेहूं वाला।
हाँ, खेत का गेहूं प्राइमरी है और जब वो मिल में जाकर आटा बन जाता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर का काम है।
ये तो बहुत क्लियरली समझ आ गया।
इस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग बनाना भी आता है।
और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सामान बनता है।
हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें आती है, जैसे लोहे को पिघला कर उससे कार्स और ट्रक्स बनाना। ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर उन चीजों को हमारे यूज करने लायक बनाता है।
एकदम, बिना मैन्युफैक्चरिंग के हम रॉ मटेरियल्स का अच्छा यूज नहीं कर सकते।
तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी रिकैप कर लेते हैं।
जरूर।
रिमेम्बर दिस, सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग की जाती है।
बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया तुमने, लेकिन अभी एक ग्रुप बचा है।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? उन लोगों का क्या जो अपने हाथों से कोई सामान ही नहीं बनाते?
मतलब?
जैसे एक डॉक्टर जो अस्पताल में इलाज करता है, या मेरे जैसा कोई होस्ट,
या फिर स्कूल के टीचर।
हाँ, ये लोग कोई फैक्ट्री में सामान तो नहीं बना रहे।
तो ये कहाँ आएंगे?
वो सारे लोग टर्शरी सेक्टर में आते हैं। इसको हम सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।
सर्विस सेक्टर, नाम से ही लग रहा है कि ये लोग सेवा देते हैं।
बिल्कुल, ये लोग पहले और दूसरे सेक्टर के लोगों की मदद करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं।
ओह, तो इसका मतलब वो ट्रक ड्राइवर जो खेत से गेहूं लेकर फैक्ट्री तक जाता है, वो टर्शरी सेक्टर में आता है।
एकदम सही। उसने गेहूं उगाया नहीं और आटा बनाया भी नहीं,
पर उसने दोनों को जोड़ने का काम किया। उसने ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी।
और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके?
वो दुकानदार जो हमें फल और सब्जी बेचता है, वो भी टर्शरी सेक्टर में आएगा। हाँ, रिटेल स्टोर्स इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा हेल्थ केयर में डॉक्टर्स और नर्सेज,
और ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी या ट्रेन चलाना।
बैंकिंग की दुनिया भी इसी में आती है, जहाँ बैंक लोग पैसे को मैनेज करते हैं।
और कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट, ये सब तो सर्विस है।
सही कहा, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज हैं। ये सब हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं और पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं।
तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं।
एकदम। तो अब टर्शरी सेक्टर का याद रखने वाला पॉइंट बता दो।
जरूर। रिमेम्बर दिस, टर्शरी सेक्टर का मतलब है सर्विस सेक्टर, जो बाकी लोगों को सपोर्ट करता है।
अब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए।
लेकिन इस टीम वर्क को बच्चों को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार स्टोरी है।
अच्छा, कौन सी स्टोरी?
ये स्टोरी है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ से एक बहुत ही मशहूर कोऑपरेटिव की शुरुआत हुई थी।
ओह, मैं समझ गई, तुम अमूल की कहानी बताने वाले हो।
हाँ बिल्कुल। चलो इसमें देखते हैं कि कॉज और इफेक्ट कैसे काम करता है। बात 1940s के टाइम की है,
जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था।
उस वक्त वहाँ के किसान गाय भैंस पालते थे। तो ये कौन सा सेक्टर हुआ?
ये प्राइमरी सेक्टर हुआ, क्योंकि ये डायरेक्टली नेचर और एनिमल से जुड़ा है।
सही, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था जिसे हम यहाँ कॉज कहेंगे। गर्मी के मौसम में वहाँ दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता था।
ये तो सच में बड़ी प्रॉब्लम होगी उस टाइम पर, क्योंकि फ्रिज तो होते नहीं थे।
और इस प्रॉब्लम का इफेक्ट क्या हुआ पता है?
क्या?
कुछ मिडलमैन यानी बिचौलिए इस मजबूरी का फायदा उठाते थे और किसानों से बहुत ही सस्ते में दूध खरीद लेते थे।
बेचारे किसान, वो इतनी मेहनत करते थे और उन्हें पैसे भी कम मिलते थे, वो बहुत परेशान होंगे।
फिर किसानों ने आजादी के एक बहुत बड़े नेता से मदद मांगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार पटेल ने क्या सलूशन दिया उन्हें?
उन्होंने किसानों को एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि अपना खुद का एक कोऑपरेटिव बनाओ।
कोऑपरेटिव मतलब सब मिलकर एक साथ आओ और मिलकर काम करो, ताकि कोई बीच वाला आपका फायदा ना उठा सके।
बिल्कुल। और साल 1946 में आखिरकार अमूल की स्थापना हुई।
वाओ, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था।
इस मूवमेंट के मेन लीडर्स थे त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
डॉक्टर कुरियन ने तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला दी थी।
हाँ, अब देखो यहाँ तीनों सेक्टर्स कैसे जुड़ते हैं। किसानों ने गाय और भैंस से दूध निकाला, ये क्या था?
ये प्राइमरी सेक्टर था।
फिर वो सारा दूध एक बड़ी फैक्ट्री में लाया गया। वहाँ मशीन से पैस्टराइजेशन हुआ, जिससे दूध खराब ना हो,
और उस दूध से बटर और मिल्क पाउडर बनाया गया।
और रॉ मटेरियल को नए प्रोडक्ट में बदलना क्या होता है?
ये होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग।
एकदम सही। और आखिर में उस तैयार बटर और मिल्क पाउडर को बड़े बड़े ट्रक से पूरे देश की दुकानों में भेजा गया,
और दुकान वालों ने उसे लोगों को बेचा। ये ट्रांसपोर्ट और बेचना टर्शरी सेक्टर बन गया।
देखा, तीनों सेक्टर्स ने मिलकर कैसे गरीबी को दूर किया और एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। बिना एक दूसरे के ये इम्पॉसिबल था।
ये स्टोरी कॉज और इफेक्ट को और तीनों सेक्टर्स के कनेक्शन को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है।
तो इस अमेजिंग कहानी का मेन टेक अवे सुन लीजिए।
बताओ।
रिमेम्बर दिस, अमूल कोऑपरेटिव की शुरुआत गुजरात के आनंद में 1946 में हुई थी। सरदार पटेल, त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसकी मदद की।
बहुत अच्छे से याद हो गया ये तो।
लेकिन सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी बातों में ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास की छोटी चीजों में भी यही रूल्स चलते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं।
बिल्कुल, कौन सा एग्जांपल?
आप लोग और बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं, वो आखिर बनती कैसे हैं?
ओह, पेपर बनाने का प्रोसेस, ये भी एक बहुत बढ़िया चेन है।
शुरुआत कहाँ से होती है?
सबसे पहले पेड़ों से लकड़ी और उस लकड़ी का पल्प निकाला जाता है। ये हुआ नेचर से कच्चा माल लेना, यानी प्राइमरी सेक्टर।
फिर उस पल्प को ट्रक्स में डालकर फैक्ट्री ले जाया जाता है।
वहाँ फैक्ट्री और प्रिंटिंग प्रेस में उस पल्प को प्रोसेस करके उसे चमकता हुआ कागज और फिर एक पूरी किताब बनाई जाती है।
तो फैक्ट्री में किताब बनाना क्या हो गया?
वो बन गया सेकेंडरी सेक्टर।
और जब वो किताब मार्केट की दुकानों पर पहुंचती है जहां से हम उसे खरीदते हैं,
वो डिलीवरी और दुकानदारी टर्शरी सेक्टर में आ गई। बिना एक दूसरे के ये चेन टूट जाएगी।
अगर प्राइमरी वाला पेड़ ना काटे तो फैक्ट्री को पल्प नहीं मिलेगा,
और फैक्ट्री ना हो तो दुकान पर किताब नहीं जाएगी।
पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही जरूरी मैसेज छिपा है।
कैसा मैसेज?
किताबें पढ़ना बहुत अच्छा है, पर इन किताबों के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, तो पेड़ों को बचाना भी तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना?
एकदम। और इसीलिए पेपर को रिसाइकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
रिसाइकल करने का मतलब पुराने कागज से ही नया कागज बनाना।
हाँ, ताकि नए पेड़ ना काटने पड़े। हमारे पास एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है।
कैसा फैक्ट?
अगर हम सिर्फ 1 टन यानी 1 टन पेपर को रिसाइकल करते हैं ना, तो हम 17 पेड़ों को कटने से बचाते हैं।
17 ट्रीज सिर्फ 1 टन पेपर रिसाइकल करके, ये तो सच में बहुत बड़ा नंबर है।
और सिर्फ पेड़ ही नहीं बचते, जब हम पेपर को रिसाइकल करते हैं तो नया पेपर बनाने के प्रोसेस के कंपैरिजन में हमारी लगभग 70% एनर्जी और वाटर भी बचता है।
70% एनर्जी और पानी की बचत, ये तो एनवायरनमेंट के साथ साथ इकोनॉमी के लिए भी एक डबल फायदा है।
सही कहा। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर ही खतरे में आ जाएगा,
और प्राइमरी नहीं बचेगा तो सेकेंडरी और टर्शरी दोनों रुक जाएंगे।
बिल्कुल।
तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक बहुत ही जरूरी सीख और फैक्ट्स आते हैं।
हाँ,
रिमेम्बर दिस, कागज को रिसाइकल करें, क्योंकि 1 टन रिसाइकल पेपर से 17 पेड़ बचते हैं और एनर्जी भी सेव होती है।
मुझे लगता है आज बच्चों ने प्रैक्टिकली समझ लिया होगा कि दुनिया कैसे काम करती है।
हाँ, आज हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स आपस में बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते हैं। इनमें से कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता।
मेरा भी यही मानना है। और ज्ञान का असली फायदा तभी है जब हम उसे अपनी असली जिंदगी में देखते हैं।
सही बात है।
तो अगली बार जब भी बच्चे बाजार में कोई खिलौना या चॉकलेट देखें, तो खुद से सोचें, ये सोचें कि वो सामान इन तीनों सेक्टर से होकर उनके हाथों तक कैसे पहुंचा होगा,
उसका कच्चा माल कहां से आया होगा, फैक्ट्री में कैसे बना होगा और दुकान तक कैसे आया होगा। ये सोचना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है।
एकदम।
लेकिन डिस्कशन खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी मजेदार और थोड़ी सी प्रोवोकेटिव थॉट सभी के दिमाग में छोड़कर जाना चाहता हूँ।
ओहो, कैसा थॉट?
आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए। आजकल कंप्यूटर्स और मशीन्स इतनी स्मार्ट हो गई हैं।
हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का जमाना आ रहा है।
तो अगर आगे चलकर आने वाले वक्त में ये रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्म्स में उगाने वाला प्राइमरी काम खुद करने लगे और फैक्ट्रीज में मशीन्स खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे जो कि सेकेंडरी काम है,
और ट्रक्स भी ड्राइवरलेस हो जाएं और डिलीवरीज रोबोट्स करने लगे जो कि टर्शरी सेक्टर है,
अगर ये तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी काम मशीन्स और AI खुद करने लगें, तो इंसानों के लिए क्या बचेगा?
ये तो बहुत ही गहरा सवाल है।
क्या इंसान अपने लिए कोई बिल्कुल ही नया चौथा सेक्टर बनाएंगे, एक फोर्थ सेक्टर जहां सिर्फ इंसानी फीलिंग्स और क्रिएटिविटी की जरूरत होगी?
इस बारे में सबको अकेले में जरूर सोचना चाहिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है।
बिल्कुल। तो इन्हीं नई, पुरानी और मजेदार बातों पर आगे भी सोचते रहिएगा, सीखते रहिए और मजे करते रहिए। आज के इस डीप डाइव में इतना ही।